एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन शायद समझ उतनी नहीं। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की।
बिल्कुल, और इसके लिए हमने जो किताब चुनी है उसका नाम ही सब कुछ कह देता है, डिप्रेशन द फैक्ट्स,
जेन स्कॉट और मैरी जेन टैकी की लिखी हुई।
हाँ, ये किताब उन लाखों लोगों के लिए एक रोशनी की तरह है जो या तो खुद इस अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं या अपने किसी अपने को इससे जूझते हुए देख रहे हैं।
और आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। मतलब हम सब मानसिक स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, जो अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है,
पर डिप्रेशन को लेकर आज भी इतनी गलत फहमियां हैं, इतना कलंक है कि लोग मदद मांगने से डरते हैं।
हाँ, ये तो है।
और उन्हीं मिथकों को तोड़ने का काम करती है, वो भी विज्ञान और सहानुभूति के साथ।
तो इससे पहले कि हम किताब के अंदर जाएं, इसके लेखकों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा।
हाँ, क्योंकि इस किताब की असली ताकत, मतलब जो इसकी यूएसपी है, वो इसके दो लेखकों के अनोखे मेल में छिपी है।
अच्छा, कैसे?
सोचिए, जैसे हमारे दिमाग का एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। तो इस किताब के लेखक इन दोनों के एक्सपर्ट हैं। एक तरफ हैं प्रोफेसर जेन स्कॉट, जो एक मनोचिकित्सक हैं, मतलब साइकैट्रिस्ट।
तो वो हुई दिमाग की हार्डवेयर विशेषज्ञ।
बिल्कुल, वो डिप्रेशन के बायोलॉजिकल पहलुओं को समझती हैं, दिमाग की केमिस्ट्री, जेनेटिक्स का क्या रोल है, दवाइयां कैसे काम करती हैं, ये सब।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है डॉक्टर मेरी जेन टैकी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं।
अच्छा, तो वो हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर पर काम करती है।
एग्जैक्टली, हमारे सोचने के तरीके, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार के पैटर्न, वो इन सबको समझने में मदद करती हैं।
ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन
है ना? और इसीलिए ये किताब इतनी खास है। ये सिर्फ दवाइयों या सिर्फ थेरेपी की वकालत नहीं करती,
मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच है।
हाँ, ये बताती है कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक असरदार इलाज तैयार किया जाता है। ये विज्ञान और इंसान के अनुभव के बीच एक पुल बनाने जैसा है।
तो फिर इस किताब का मुख्य संदेश क्या है, अगर किसी को एक लाइन में बताना हो तो?
अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, और ये सच में सब कुछ बदल देती है।
बताइए।
डिप्रेशन कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बस यूं ही बाहर निकल सकता है।
ये सुनना ही बहुत बड़ी राहत है।
ये एक वास्तविक इलाज योग्य मेडिकल बीमारी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी को डायबिटीज होता है या अस्थमा।
ये सोचना ही अपने आप में इतना बड़ा बोझ हटा देता है ना, मतलब ये आपकी गलती नहीं है।
बिल्कुल।
तो ये किताब एक बुनियादी सवाल का जवाब देती है, डिप्रेशन असल में है क्या और इसके बारे में क्या किया जा सकता है।
हाँ, ये डर और शर्म को समझ, स्वीकृति और आगे बढ़ने के एक स्पष्ट रास्ते में बदल देती है। ये पाठकों को एक यात्रा पर ले जाती है।
कैसी यात्रा?
पहले ये समझाती है कि क्लिनिकल डिप्रेशन रोजमर्रा की उदासी से कैसे और क्यों अलग है, फिर इसके कारणों की पड़ताल करती है, और अंत में इलाज के बहुत ही व्यावहारिक और उम्मीद जगाने वाले तरीकों पर बात करती है।
मतलब ये अंधेरे से रोशनी तक का एक रोडमैप है।
तो चलिए इस रोडमैप को और करीब से देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिप्रेशन आखिर है क्या।
हाँ, क्योंकि किताब कहती है कि ये सिर्फ उदास महसूस करने से कहीं ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है, यही सबसे बड़ा फर्क है। रोजमर्रा की उदासी में शायद दोस्तों से बात करने से मूड ठीक हो जाए
या कोई अच्छी फिल्म देख ली।
हाँ, पर डिप्रेशन में खास लक्षण होता है जिसे विशेषज्ञ एनहेडोनिया कहते हैं।
एनहेडोनिया,
इसका मतलब है उन चीजों में भी खुशी महसूस ना कर पाना जो पहले बहुत पसंद थी।
ओह,
पसंदीदा गाना भी शोर लगने लगता है, पसंदीदा खाना बेस्वाद।
ये तो बहुत बड़ा संकेत है। और इसके अलावा?
इसके अलावा नींद और भूख में बहुत बड़े बदलाव, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। हर समय थकान महसूस होना, जैसे शरीर की सारी एनर्जी किसी ने खींच लियो।
और मानसिक तौर पर?
अपराध बोध या खुद को बेकार समझने की भावनाएं, किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, और सबसे गंभीर मामलों में आत्महत्या के विचार आना।
किताब ये भी बताती है कि डिप्रेशन का कोई एक ही रूप नहीं होता।
सही कहा। जैसे डाइस्थीमिया है, जो लंबे समय तक चलने वाला हल्का डिप्रेशन है, ये जीवन के बैकग्राउंड में एक धीमी लगातार बजने वाली धुन की तरह बना रहता है।
या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो बच्चे के जन्म के बाद कई माताओं को प्रभावित करता है।
और फिर वो सबसे बड़ा सवाल जो हर पीड़ित पूछता है, ये मुझे ही क्यों हुआ।
हाँ, ये सवाल तो आता ही होगा मन में।
इसके जवाब में किताब एक बहुत ही कमाल का मॉडल पेश करती है, बायोसाइकोसोशल मॉडल।
बायोसाइकोसोशल, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है जैविक, बायोलॉजिकल।
हाँ, यानी हमारे शरीर से जुड़ा पहलू। इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आपका खतरा बढ़ सकता है।
और दूसरा ब्रेन केमिस्ट्री।
हाँ, किताब इसे सरल भाषा में समझाती है कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो खुशी और सुकून के सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचाते हैं। डिप्रेशन में ये सिग्नल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जैसे फोन पर आवाज कटखट कर आ रही हो।
अच्छा, तो दिमाग में मूड के सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते।
बिल्कुल। अब दूसरा है मनोवैज्ञानिक।
ये हमारे सोचने के पैटर्न के बारे में है ना, हमारा सॉफ्टवेयर।
सही पकड़ा। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में नेगेटिविटी खोजने की, या खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखने की, जिसे परफेक्शनिज्म कहते हैं।
अगर मैं सब कुछ परफेक्ट तरीके से नहीं करूंगा तो मैं फेलियर हूँ, इस तरह की सोच।
हाँ, यही सोच डिप्रेशन का रास्ता बना सकती है।
और तीसरा सामाजिक, सोशल कारक।
ये बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। नौकरी छूटना, किसी अपने की मृत्यु, तलाक या गहरा अकेलापन, ये जीवन के बड़े तनाव डिप्रेशन के लिए ट्रिगर का काम कर सकते हैं।
तो मतलब कोई एक कारण नहीं है?
नहीं, ये मॉडल बताता है कि डिप्रेशन एक जटिल पहेली है जिसमें ये तीनों टुकड़े शामिल होते हैं।
गए कि दुश्मन दिखता कैसा है और आता कहां से है, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है?
किताब इस प्रक्रिया को बहुत व्यावहारिक और सरल बनाती है ताकि मदद मांगने की घबराहट कम हो। यह बताती है कि डॉक्टर से कैसे बात करें, अपने लक्षणों को कैसे समझाएं, और फिर इलाज के दो मुख्य रास्तों पर विस्तार से बात करती है।
पहला तो शायद थेरेपी है।
हाँ हाँ, जैसे हम टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। इसमें भी किताब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर ज्यादा जोर देती है,
CBT।
इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल और शक्तिशाली है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं।
अच्छा,
अगर हम इनमें से एक को भी बदल दें तो बाकियों पर भी असर पड़ता है।
सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये काम कैसे करता है?
देखिए, ये सिर्फ बातें करना नहीं है, इसमें कुछ खास तकनीकें सिखाई जाती हैं। पहली है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग,
यानी विचारों को फिर से बनाना।
हाँ, इसमें व्यक्ति अपने आप आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखता है। मान लीजिए किसी का विचार है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बेकार हूँ।
ये तो डिप्रेशन में बहुत आम विचार है।
बिल्कुल। तो थेरेपिस्ट उसे एक जासूस की तरह इस विचार की जांच करने को कहता है। क्या ये 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है?
मतलब अपने ही विचारों पर सवाल उठाना।
हाँ, धीरे धीरे व्यक्ति इन झूठे विचारों को चुनौती देना और उन्हें संतुलित यथार्थवादी विचारों से बदलना सीखता है। ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है।
और दूसरी तकनीक?
दूसरी है बिहेवियरम एक्टिवेशन। ये बहुत दिलचस्प है। डिप्रेशन में बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता।
सही बात है।
ये तकनीक कहती है कि भले ही मन न हो, जानबूझकर कोई छोटी सी सकारात्मक गतिविधि करो, बस 10 मिनट के लिए टहलने चले जाओ।
लेकिन जब मन ही नहीं है तो कैसे करें?
यही तो इसका जादू है। ये कहती है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो।
अच्छा।
जब आप छोटा सा एक्शन लेते हैं तो उससे उपलब्धि की एक हल्की सी भावना पैदा होती है, जो फिर थोड़ा और एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन देती है। ये उस न हिलने वाले चक्र को तोड़ने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है।
थेरेपी तो ठीक है, पर ये दिमाग के सॉफ्टवेयर पर काम करती है, उस हार्डवेयर का क्या, यानी ब्रेन केमिस्ट्री?
बिल्कुल। और यहीं पर इलाज का दूसरा तरीका आता है, शारीरिक उपचार। इसमें मुख्य रूप से दवाइयां शामिल हैं।
लेकिन जब बात दवाइयों की आती है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है इसकी लत लग जाएगी या ये उन्हें बदल देगी।
हाँ, और किताब इस डर को बहुत अच्छे से दूर करती है। वो बताती है कि SSRIs जैसी आधुनिक दवाएं कैसे दिमाग में उन केमिकल मैसेंजर्स को संतुलित करके काम करती हैं।
वो खराब फोन सिग्नल को ठीक करने जैसा।
एग्जैक्टली। किताब इस बात पे जोर देती है कि सही दवा और सही खुराक खोजने में समय लग सकता है, इसके लिए डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहना जरूरी है।
और लत लगने वाली बात,
किताब साफ कहती है कि ये दवाएं नशे की लत नहीं लगाती, ये व्यक्तित्व को बदलती नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसके सामान्य स्वरूप में वापस लाने में मदद करती है।
रिकवरी सिर्फ दवा और थेरेपी तक तो सीमित नहीं होगी?
बिल्कुल नहीं। रिकवरी एक मंजिल नहीं, एक सफर है। इसके लिए किताब स्व सहायता या सेल्फ हेल्प पर एक पूरा सेक्शन देती है।
इसमें क्या क्या आता है?
इसमें व्यायाम की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया है। रिसर्च बताती है कि नियमित व्यायाम एक हल्के एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम कर सकता है।
अच्छा।
इसके अलावा संतुलित आहार, अच्छी नींद की आदतें और तनाव कम करने के लिए माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों पर भी बात की गई है।
किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाने का। ये क्या है?
ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान है। व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर उन शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना सीखता है जो डिप्रेशन की वापसी का इशारा दे सकते हैं।
जैसे कि?
जैसे फिर से नींद में गड़बड़ी होना या लोगों से कटने लगना।
और प्लान में क्या होता है?
प्लान में साफ लिखा होता है कि अगर ये संकेत दिखें तो तुरंत कौन कौन से कदम उठाने हैं, जैसे अपने डॉक्टर को फोन करना है या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करनी है। ये तैयारी आपको असहाय महसूस करने से बचाती है।
इस सब में परिवार और दोस्तों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन अक्सर उन्हें समझ नहीं आता कि मदद कैसे करें।
हाँ, और ये किताब उनके लिए एक बेहतरीन गाइड है। ये बहुत साफ साफ बताती है कि क्या करें और क्या ना कहें।
तो पहले बात करते हैं कि क्या नहीं कहना चाहिए।
सबसे पहले तो खुश रहो, पॉजिटिव सोचो।
अरे, तुम्हारी जिंदगी में तो सब अच्छा है।
हाँ, इन सब क्लीशेज से बचें। ये बातें पीड़ित को और भी अकेला महसूस कराती हैं, जैसे वो जानबूझकर दुखी हो।
सही है, तो फिर क्या करना चाहिए?
सबसे जरूरी है बिना जज किए सुनना, बस उनकी बात सुने। दूसरी चीज, व्यावहारिक मदद की पेशकश करें। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ पूछने के बजाय कुछ कॉन्क्रीट कहें, जैसे क्या मैं आज तुम्हारे लिए खाना बना दूं?
या चलो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ।
बिल्कुल, और सबसे जरूरी, उन्हें प्रोफेशनल मदद लेने के लिए धीरे से प्रोत्साहित करें। और हाँ, किताब देखभाल करने वालों को भी अपना ध्यान रखने की सलाह देती है।
अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे? मेरे लिए जो सबसे पहली और जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है, डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है, चरित्र की कमजोरी नहीं।
ये एक लाइन ही किसी की जिंदगी से आत्मदोष का बहुत बड़ा बोझ हटा सकती है।
सही कहा।
मेरे लिए दूसरा बड़ा संदेश है ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण। जब लोगों को अपनी स्थिति के बारे में सही जानकारी होती है तो वे डर और लाचारी महसूस करने के बजाय अपनी रिकवरी में एक एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं।
और तीसरा, रिकवरी एक सक्रिय और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये सिर्फ एक जादुई गोली नहीं है।
नहीं, इसमें थेरेपी में मेहनत करना, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना, ये सब शामिल है। ये एक टीम वर्क है।
और चौथा?
चौथा जो मुझे बहुत उम्मीद देता है, सबके लिए एक ही इलाज काम नहीं करता, हर व्यक्ति अलग है। अगर एक तरीका काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते।
इसका मतलब है कि हमें कोई दूसरा रास्ता आजमाना होगा।
हाँ, उम्मीद छोड़ने की कोई वजह नहीं है।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, सीधे सीधे उद्धरण ना होते हुए भी ये किताब के सार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं।
हाँ, जैसे एक विचार जो मेरे जहन में रह गया, आपके विचार तथ्य नहीं है। डिप्रेशन वाला दिमाग एक बहुत भरोसेमंद झूठा होता है।
वाह, भरोसेमंद झूठा।
हाँ, और रिकवरी का एक मुख्य काम उसके नकारात्मक संदेशों को सच मानने के बजाय उन पर सवाल उठाना सीखना है।
ये कितना शक्तिशाली है, ये आपको आपकी बीमारी से अलग करता है।
बिल्कुल, एक और विचार है, मदद मांगना असफलता का संकेत नहीं है, ये एक जटिल स्वास्थ्य स्थिति को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की दिशा में पहला और सबसे साहसी कदम है।
ये ताकत की निशानी है।
एग्जैक्टली, और एक आखिरी बात जो रिलैप्स के डर को कम करती है, रिलैप्स का मतलब ये नहीं है कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बीमारी पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। जो कौशल आपने पहली रिकवरी के दौरान सीखे थे वे अभी भी आपके पास हैं।
तो इन सब बातों को हम अपने असल जीवन में कैसे उतार सकते हैं?
कई तरीकों से। अगर कोई खुद इन लक्षणों से गुजर रहा है तो ये किताब उसे अपने डॉक्टर से बात करने के लिए सही शब्द देती है।
मतलब सिर्फ मैं उदास हूँ नहीं कहना है?
नहीं, बल्कि कह सकते हैं मुझे लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो सकता है, मुझे एनहेडोनिया और नींद की समस्या हो रही है, इससे सही निदान में मदद मिलती है।
और परिवार या दोस्तों के लिए?
वे समझ सकते हैं कि उनका प्रियजन आलसी नहीं है बल्कि बीमार है, वो सब ठीक हो जाएगा कहने के बजाय पूछ सकते हैं आज मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ।
ये एक छोटा सा बदलाव रिश्ते में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।
बिल्कुल, और इसे हम अपने दफ्तरों में भी लागू कर सकते हैं। एक मैनेजर जो इन बातों को समझता है वो किसी कर्मचारी को डांटने के बजाय सहानुभूति के साथ पूछ सकता है कि क्या सब ठीक है।
ये समाज में कलंक को कम करता है और एक ज्यादा सहायक माहौल बनाता है। आज की इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि उम्मीद हमेशा होती है। डिप्रेशन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग की तरह लग सकता है, लेकिन ये किताब वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर एक बहुत ही स्पष्ट और आशावादी नक्शा देती है कि उस सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें दिमाग की बायोलॉजी और व्यक्ति के मनोविज्ञान दोनों का सम्मान करना होगा। रिकवरी सिर्फ लक्षणों को खत्म करना नहीं है, बल्कि जीवन में खुशी, उद्देश्य और जुड़ाव को फिर से पाना है।
यह सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि फिर से जीना सीखना है।
और आज के श्रोताओं के लिए हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है, ठीक डायबिटीज या दिल की बीमारी की तरह, तो समाज के रूप में हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं, कार्यस्थलों और अपनी आपसी बातचीत में इसे शारीरिक बीमारियों के बराबर का दर्जा और गंभीरता देने के लिए और क्या ठोस कदम उठा सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।